स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 3 जून, दिन शुक्रवार और मैं हूँ अमरीश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उपद्रवियों और पुलिस के बीच हुए टकराव में 2 पुलिसकर्मियों समेत 24 लोगों की मौत। सरकार ने दिए जांच के आदेश।
ना भारत सरकार की करेंसी को मानते थे, ना संविधान को मानते थे, 1 रुपए में 60 लीटर डीजल मांगते थे।
सत्याग्रह करने वालों के पास इतनी बड़ी संख्या में मिले हथियार, प्रशासन की सतर्कता पर उठाते हैं सवाल। चलो रियो के दूसरे अंक में आज चर्चा 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक की, जब भारत ने लगातार दूसरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था।
32 का ओलंपिक जो चाचा रूपिंग ने खेला है वहाँ पर, उसमें गोल उनके मैक्सिमम चाचा रूपिंग के हुए, ध्यानचंद जी के नहीं हुए, रूपिंग साहब के गोल हुए इन दोनों।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख जावेद अहमद ने कहा है कि मथुरा के जवार बाग को उपद्रवियों से पूरी तरह खाली करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि जवार बाग में कल हुई हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 24 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 23 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए हैं। अहमद ने बताया कि पुलिस ने जवार बाग से 47 देशी पिस्तौल, 6 राइफल और 178 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में अभी तक 124 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 196 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद बचाव अभियान जारी है। नाव में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी सवार थे। ग्रीस के कोस्ट गार्ड के मुताबिक अब तक 340 लोगों को बचा लिया गया है। 4 लोगों के शव निकाले गए हैं। ज़्यादातर लोग कार्गो नौका में सवार थे और इटली जा रहे थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स के स्थानीय प्रमुख ने बताया, ये नाव 25 मीटर लंबी थी और इसमें कम से कम 700 लोग सवार हो सकते हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जियां मार्क कैरो ने आगाह किया है कि इसराइल और फलस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया खतरे में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए 20 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। इनमें इसराइल और फलस्तीन का कोई प्रतिनिधि नहीं है। बातचीत के लिए जुटे देश इसराइल और फलस्तीन के बीच इस साल के अंत तक बातचीत शुरू कराने का खाका तैयार करने की कोशिश में हैं। इस मामले में यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति की प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि बातचीत में हिस्सा ले रहे देशों को सही माहौल तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा,
We still refer to the Middle East peace process, but the reality of fact is that in this moment there is no peace process at all. So the role of
हम अभी मध्य पूर्व की शांति प्रक्रिया की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि कोई शांति प्रक्रिया नहीं चल रही है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर यूरोपीय यूनियन का पहला दायित्व शांति प्रक्रिया दोबारा बहाल करने लायक माहौल तैयार करने का है। ये थे फेडरिका मोगेरिनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के मध्य हिस्से में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अधिकारियों का कहना है कि सेन नदी 6 मीटर के स्तर पर पहुंच गई है और आने वाले घंटों में पानी का स्तर और ऊपर बढ़ेगा। रेलवे स्टेशन और संग्रहालयों को बंद कर दिया गया है। वहीं जर्मनी में बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, कई अन्य लोग लापता भी हैं। फीफा का कहना है कि हाल तक फीफा के शीर्ष पदों पर रहे 3 अधिकारियों ने खुद को वेतन और बोनस के जरिए $80,00,000 का भुगतान किया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, मथुरा में उपद्रवियों और पुलिस के बीच हुई हिंसा में 2 पुलिसवालों समेत 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बीती रात से अब तक 120 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 200 लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और असलहे भी बरामद किए हैं। सीधे चलते हैं मथुरा बीबीसी संवाददाता विनीत खरे के पास। विनीत, अभी क्या हालात हैं वहां, जवाहर बाग की क्या स्थिति है?
देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले जवाहर बाग के बाहर ही थे और अभी हम जा भी रहे हैं उसी तरफ। अभी जो वो पूरा इलाका है वहां पर एक तो घुसने नहीं दिए जा रहे। करीब 42 हेक्टेयर का इलाका है जहां पर करीब 3,000 लोग, जैसा कि बताया जा रहा है, कल तक इकट्ठा थे। अभी उस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है और अभी वहां पर उसके सामने पुलिस वाले हैं, काफी बड़ी संख्या में मीडिया वाले हैं और स्थानीय लोग भी हैं, लेकिन जो 3,000 लोग बताए जा रहे हैं उनका कोई पता नहीं है कि भाई वो कहाँ है हमारी। और यहाँ पर लोग हैं, कई तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। हमारे थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं दलजीत चौधरी, मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे यही सवाल रखा कि भाई शहर के बीचों बीच इतना बड़ा जमावड़ा था, 2.5 साल से लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और आपको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, लोगों के पास हथियार हैं और आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उनको कैसे पता नहीं चला? तो उन्होंने मुझे बताया
शासन के द्वारा एक जांच बिठा दी गई है जिसकी जांच कमिश्नर अलीगढ़ द्वारा की जाएगी, यदि किसी प्रकार का कोई लैप्स नजर आएगा दिखेगा तो निश्चित रूप से
प्राइम एफएससी, आपको लगता है कि इनएफिशिएंसी हुई है, LIU का फेल, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये तो मानेंगे आप?
देखिए अभी हमारा
आपके दो वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हुई है,
एक सिविल सोसाइटी में ये प्रयास किया जाता है कि बातचीत करके, नोटिस देकर, उनको इतला करके, आगाह करके, वार्न करके उसको खाली करा लेना चाहिए। ये चीज, इस चीज का अंदाजा नहीं रहा उस दिन पर्टिकुलरली, उस जिस दिन ये घटना हुई, कि वो इतने उग्र रूप धारण कर लेंगे और उनका जो क्रिमिनल साइड जो है उस अनलॉफुल असेंबली का।
जी तो ये थे ADG दलजीत चौधरी, और जैसा कि आपने सुना होगा बहुत सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जवाबों की कमी है और एक्सप्लेन लोग नहीं कर पा रहे हैं जो अधिकारी हैं कि भाई ये कहाँ भूल चूक हो गई है। जो पुलिस अधिकारी, दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मारे गए हैं उनको लेकर यहाँ पर शोक मनाया जा रहा है, आज उनके लास्ट राइट्स है यहाँ पर। और मेरी एक स्थानीय वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से बात कर रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे कि जिस तरह का जो वायलेंट ब्रूटल डेथ इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को के साथ हुआ। स्थानीय लोगों की बात करें तो बिल्कुल शॉक है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो गया, लोग और पुलिस, जो पुलिस वाले थे या अधिकारी थे वो कैसे नहीं चीजों को भांप पाए। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना था।
इनको काफी टाइम से आग्रह किया जा रहा था कि आप खाली कर दीजिए शांतिपूर्वक, बट ये लोग खाली नहीं कर रहे थे, अपने बल का प्रयोग कर रहे थे बार बार।
इनको 2.5 साल हो गई, 2.5 साल से यहाँ रह रहे थे, आए तो थे DM साहब से कहने के 2 दिन का टाइम लेंगे, लेकिन 2.5 साल से ये निकल ही नहीं रहे, और वहाँ से निकल के आने पर और कभी तहसील वालों को मारते हैं, कभी पुलिस वालों को मारते हैं, मतलब ऐसा इनने बना रखा है।
ये ना तो भारत सरकार को मानते थे, ना भारत सरकार की करेंसी को मानते थे, ना संविधान को मानते थे, 1 रुपये में 60 लीटर डीजल मांगते थे, 12 रुपये तोले सोना मांगते थे, मतलब इनकी डिमांड ऐसी थी जो यहाँ का प्रशासन तो क्या भगवान भी पूरी नहीं कर सकता।
विनीत, ये जो कथित स्वाधीन भारत सुभाष सेना के उपद्रवी थे उनमें से, ऐसा बताया जा रहा है कि जवाहर बाग जो इलाका है वहाँ से उनको खाली करा लिया गया है, अभी ताज़ा हालात क्या है, गिरफ्तारियों की संख्या क्या है और पुलिस क्या कह रही है?
देखिए ये सही बात है, ताज़ा कि पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है, जो एक्सेस है वो ब्लॉक है। पुलिस का कहना है कि करीब 320 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जैसा कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ अमरेश, मेरे सामने जो कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उनके हाथों में मोमबत्तियां हैं और कैंडल मार्च निकाली जा रही है उनकी याद में जो लोग मारे गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं पुलिस को देने हैं, इंक्वायरी कब कब उसके रिजल्ट आएंगे, क्या इंक्वायरी में निकलेगा, लेकिन अभी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं अमरीश।
बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए, आप वहां नजर बनाए रखिए, हम अगले कार्यक्रम में दोबारा आपके पास लौटेंगे। मथुरा में हुए हिंसक संघर्ष के बाद वहां बड़ी संख्या में मिले हथियार पुलिस के लिए भी हैरानी का सबब बने हुए हैं। चर्चा यही है कि आखिर सत्याग्रह करने वालों के पास से इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सत्याग्रहियों को लेकर वो पहले से ही आशंकित थे और इनके खिलाफ शिकायतें भी थीं, फिर भी प्रशासन ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोग इनके पीछे राजनीतिक समर्थन होने की बात भी कह रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र ने इन्हीं कुछ सवालों को जानने की कोशिश की है, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी रहे रामवृक्ष यादव 2 साल पहले 200 लोगों के साथ मथुरा आए थे और 2 दिन रहने के लिए प्रशासन से उन्होंने जगह मांगी थी। 2 साल के भीतर उसी जवाहर बाग में उन्होंने करीब 3,000 लोगों को अवैध तरीके से बसा दिया और लगभग 300 एकड़ जमीन पर उनका प्रभाव स्थापित हो गया। कथित तौर पर सत्याग्रह करने वाले इन लोगों के पास से बड़ी संख्या में मिले असलहे इसकी गवाही दे रहे हैं। यही नहीं, पिछले कुछ समय से उनकी स्थानीय लोगों के साथ भी कई बार भिड़ंत हुई, लेकिन किन वजहों से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई ये सवाल उलझा हुआ है। इनके इस अवैध कब्जे के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने वाले विजय पाल सिंह तोमर कहते हैं,
सब गांवों के लोग आकर के यहाँ पे विरोध करने लग गए थे और काफी वो पैदा कर दिया था। आतंक ये बता रहे थे सीओ सिटी को पीट देना, सीओ सिटी मजिस्ट्रेट को पीट देना, चाहे पुलिस वाले को पीट देना, चौकी इंचार्ज को आए दिन पीट देना, वहाँ के लोकल जो निकल रहे हैं उनको पीट देना, बोलो जय हिंद जय फलाने, इस तरह की बातें करना, गांव के लोगों को पीटना, अंदर किसी घुसने नहीं देना। जब जवाहर बाग तो पब्लिक प्लेस है ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उन्होंने पूरे पूरे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट को पीट पीट के वहां से भगा दिया, बंद करवा दिया ऑफिस। शासन का पर्याय बन गए थे, शासन का पूरा दबाव था, इसलिए शासन इनको डीएमएसएस को पुलिस फोर्स और पूरा जो जो इन्होंने मांगा था शासन से सहयोग वो इनको नहीं दिया, आधा अधूरा दिया, जिसकी वजह से घटना है।
विजयपाल सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था और इसी डर के कारण प्रशासन कई बार खुद पर हमले होने के बावजूद कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। स्थानीय पत्रकार विजय कुमार विद्यार्थी भी तोमर की बात से इत्तेफाक रखते हैं।
आम आदमियों में ये चर्चा जरूर रही है, क्योंकि इनका संबंध उनसे रहा है और यादव होने के नाते, और आज सरकार जो है उसके मुखिया यादव हैं, इसलिए जनता जरूर इस तरीके की चर्चा अपने आप करती रही है। बाकी इनके साथ जो लोग सब थे वो ये नहीं कह सकते कि हम लोग कि एक ही समुदाय के थे, एक ही तरीके के लोग थे।
विद्यार्थी के मुताबिक ये लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि जवाहर बाग पर कब्जे के बाद ये लोग आसपास के इलाकों में भी फैलने की कोशिश में थे और इसे लेकर स्थानीय लोगों से कई बार झड़पें हो चुकी हैं। मथुरा में लेखपाल संघ के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं,
लोकल लोगों से लड़ाई झगड़े का तो मेरे ज्यादा संज्ञान में है नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि 13 मार्च 2016 को तो उद्यानवालों के साथ हुआ था और 4 अप्रैल को तहसील में लोगों ने आक्रमण किया था। वैसे भी इनका जो इतिहास है वो ठीक नहीं रहा है, संत कबीर नगर में, बरेली में भी इन लोगों ने वारदातें की थी, क्योंकि ये लोग ठीक नहीं है, नक्सलवादी टाइप के हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक इस संगठन के मुखिया रामवृक्ष यादव का चलने का तरीका किसी डॉन से कम नहीं था। उनके साथ हर समय हथियार बंद लोग रहा करते थे। पुलिस ने उनकी मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी हिंसा और घेरेबंदी के बाद भी यदि वो फरार हो जाते हैं तो इससे उनके नेटवर्क, कार्यप्रणाली और मंशा का साफ पता चलता है। जानकारों का ये भी कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में असलहों के इकट्ठे होने की जानकारी न होना इंटेलिजेंस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठाता ही है, लेकिन यदि इन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिला था तो ये और गंभीर मुद्दा है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
बीबीसी इंडिया बोल।
अत्यधिक बल का इस्तेमाल हो या कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण में असफलता, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। क्या भारतीय पुलिस अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा पाई है? यही है शनिवार 4 जून को प्रसारित होने वाले इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमें मुफ्त फोन करें 1811-7001, 1811-7001 पर। इंडिया बोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त है आज की हमारी खास पेशकश का। चलो रियो के दूसरे अंक में आज चर्चा 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक की, जब भारत ने लगातार दूसरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। जिक्र होगा ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह का भी, और आपको मिलवाएंगे रियो ओलंपिक में कुश्ती में भारत की बड़ी उम्मीद योगेश्वर दत्त से। पेश कर रहे हैं रेहान फजल।
चलो रियो, चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। ओलंपिक मंच पर अपना सब कुछ झोंक देने के इस जज्बे ने ही दुनिया के महानतम एथलीटों को हर कीमत पर इन खेलों में भाग लेने के लिए बाध्य किया है। पूरी दुनिया में आई मंदी और वॉल स्ट्रीट क्रैश भी भारतीय हॉकी टीम को लॉस एंजलिस पहुंचने से नहीं रोक सका। इन ओलंपिक खेलों में हॉकी में दुनिया की सिर्फ 3 टीमों ने भाग लिया था, मेजबान अमरीका, जापान और भारत। टीम के चयन से पहले कोलकाता में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 1928 के कप्तान जयपाल सिंह को बंगाल की टीम तक से खेलने के लिए नहीं चुना गया। हालांकि वो समय कोलकाता में ही रह रहे थे और मोहन बगान हॉकी क्लब की कप्तानी कर रहे थे। ध्यानचंद के अलावा 1928 की टीम के सिर्फ 3 सदस्य 1932 की टीम में जगह बना पाए, एलन, पिनिगर और हेमंत। लाल शाह बुखारी को इस टीम का कप्तान बनाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 18 मार्च 1932 के अंक में लिखा,
बुखारी को कप्तान बनाने से कुछ निराशा हुई, क्योंकि 1928 के फाइनल मैच में कप्तानी कर चुके पेनिगर ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें ही कप्तान बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया तो वो टीम के साथ लॉस एंजलिस नहीं जाएंगे। उनको अंततः एक पत्रकार चार्ल्स न्यूहैम ने जाने के लिए मनाया। जयपाल सिंह को टीम से बाहर रखा गया, हालांकि वो अपने खर्चे पर लॉस एंजलिस जाने के लिए तैयार थे। उस समय भी हमेशा की तरह फेडरेशन के पास टीम को लॉस एंजलिस भेजने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे।
ध्यानचंद अपनी आत्मकथा गोल में लिखते हैं कि भारतीय टीम के लिए फंड जमा करने के अभियान में महात्मा गांधी को शामिल करने की असफल कोशिश की गई। चार्ल्स न्यूहैम ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वो भारतीय हॉकी टीम के लिए धन जुटाने में उनकी मदद करें। गांधी जी ने न्यूहैम के पत्र के जवाब में लिखा,
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे पता ही नहीं है कि हॉकी जैसा भी कोई खेल होता है। मैं इस बारे में भी निश्चित नहीं हूँ कि आम लोगों की इस खेल में रुचि है या नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत में हॉकी का कोई मैच नहीं देखा है। मुझे दुख है, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
लेकिन इसके बावजूद भारतीय हॉकी फेडरेशन के प्रमुख एफ हेमेन और पंकज गुप्ता के प्रयासों से इतना पैसा जोड़ लिया गया कि लॉस एंजलिस तक पहुंचने का भारतीय टीम का किराया निकल आए। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा,
सभी खिलाड़ी मैच के बाद मिलने वाला 2 पाउंड का अलाउंस छोड़ने को राजी हो गए ताकि टीम को पैसों की कोई कमी न रहे।
42 दिन के सफर के बाद जिस दिन भारतीय हॉकी टीम लॉस एंजलिस पहुंची, वहां के एक अखबार ने लिखा,
आज हॉकी के बादशाह पधार रहे हैं, उनकी बहुत सी बीवियां भी उनके साथ हैं, टीम में 2 शेर भी आ रहे हैं।
वास्तव में भारतीय दल में एकमात्र महिला टीम के मैनेजर गुरुदत्त सोंधी की पत्नी थी और टीम के 2 शेर थे, 2 सिंह, रूप और गुरमीत। मैच का उद्घाटन अमेरिका के उपराष्ट्रपति चार्ल्स कर्टिस ने किया।
इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आई प्रोक्लेम ओपन द ओलंपिक गेम्स ऑफ लॉस एंजेलिस।
Now the doves of peace, more than 5,000 doves are released and make their way skyward and symbolically spread their message to the world.
पहले मैच में भारत ने जापान को 11-1 से हराया। ध्यानचंद ने 4 गोल किए जबकि रूप सिंह और गुरमीत ने 3-3 गोल। भारत नर्म मैदान पर खेलने का आदि नहीं था, वरना जापान पर और गोल होते। इस मैच के बाद भारत का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने अमेरिका के खिलाफ अगले मैच में टीम में कई परिवर्तन किए। बाद में हॉकी फेडरेशन के प्रमुख हेमन ने लिखा,
ऐसा इसलिए किया गया ताकि टीम के सभी 15 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सके। ओलंपिक नियम कहते हैं कि उन्हीं खिलाड़ियों को पदक दिया जाएगा जिन्होंने प्रतियोगिता के कम एक मैच में भाग लिया हो।
सबको उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के खिलाफ जीतेगा, लेकिन किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि भारत औसतन हर 3 मिनट पर 1 गोल करेगा और जीत का अंतर होगा 24-1। ओलंपिक हॉकी में ये जीत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर है। और अब जिक्र उस हॉकी खिलाड़ी का जो हॉकी का जादूगर तो नहीं कहलाता था, लेकिन हॉकी कौशल में उसका भी कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह की, जिन्होंने ध्यानचंद के साथ साथ लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अपने जमाने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट रूप सिंह ने भारत के लिए ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद से ज्यादा गोल किए हैं। हजब का स्टिक वर्क था उनका। उनके शॉट इतने तेज होते थे कि कई बार डर होता था कि उससे कोई घायल ना हो जाए। लॉस एंजलिस जाते हुए जब भारतीय टीम श्रीलंका में कुछ मैच खेलने के लिए रुकी, तो ध्यानचंद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूप मुझसे बेहतर खिलाड़ी है। ध्यानचंद बिना वजह किसी की तारीफ करने के कायल नहीं थे। 1 महीने बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक में ध्यानचंद के शब्द सही साबित हुए, जब भारत के स्कोर किए गए 35 गोलों में 13 गोल रूप सिंह ने किए और 12 ध्यानचंद ने। रूप सिंह के भतीजे और ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार, जो भारत की 1975 विश्व विजेता हॉकी टीम के सदस्य थे, बताते हैं,
स्टाइलिश अच्छे खासे लंबे खूबसूरत शरीर के मालिक, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। उन दिनों में जैसे हालात थे वो तो थे ही घर के, लेकिन बाबूजी ने फिर अपने पैसों से उनको कपड़े खरीद के दिए, एक सूट खिलाया तो वो पहन के गए। 32 का ओलंपिक जो चाचा रूप सिंह ने खेला है वहाँ पर अमेरिका में, उसमें गोल उनके मैक्सिमम चाचा रूप सिंह के हुए। ध्यानचंद जी के नहीं हुए, रूप सिंह साहब के गोल हुए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी खूबसूरत थी कि किस जगह पे बॉल आपस में लेनी है, देनी है, कहाँ गोल करना है।
1936 के बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में रूप सिंह ने जर्मनी के खिलाफ पहला गोल किया था। इस मैच को भारत ने 8-1 से जीता था।
अब तक सिर्फ एक गोल हिंदुस्तान की जर्मन के ऊपर हम कर पाए, और उसमें वो गोल भी कैप्टन रूप सिंह ने किया था पहला गोल। और गोल करने के बाद जर्मन टीम अटैक पे अटैक कर रही थी, और इंटरवल हुआ, इंटरवल में दोनों भाई ने आपस विमर्श किया कि रूप क्या करें, एक ही गोल हुआ है, अगर एक गोल हम बराबर और ऊपर ने हम जीत चढ़ाते तो जर्मन बराबर कर लेंगे और हमारी टीम हार सकती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम नंगे पैर खेलेंगे, और उन्होंने दोनों भाइयों ने अपने जूते उतारे हैं 36 में और नंगे पैर खेलना शुरू किया। जैसे ही जूते उतार के खेलना शुरू किया, उनके पैर में ग्रिप आनी शुरू हुई, और वो मैच जब हम जीते हैं 8-1 से हिटलर के बीच में ही, जो बाबूजी ने बताया हिटलर मैच छोड़ के निकल गया था, अपनी टीम को हारता हुआ नहीं देख सका वो।
चलो रियो, आप सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। 1936 ओलंपिक खेलों को ध्यानचंद के अलावा याद किया जाएगा अमेरिका के अश्वेत धावक जेसी ओवेंस के 4 स्वर्ण पदकों की वजह से।
जेसी ओवेंस वाज द स्मूथेस्ट एथलीट आई हैव एवर सीन। ही रन लाइक वाटर फ्लोइंग।
देयर वाज नेवर बिफोर आफ्टर अ मैन हु कंबाइंड ब्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, एंड टू वॉच हिम वाज अ डिलाइट।
After the fanfares of the Olympic opening comes the most amazing performance by America's black streak, Jesse Owens.
I think of the tremendous crowds. I think of the thing that I had wanted to do more than anything else in the world, and that was to be able to win the 100.
मैं वहां मौजूद भारी भीड़ के बारे में सोचता हूं। मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूं जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा करना चाहता था। उनमें से एक था 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करना। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसा कर सका।
ये थे महान एथलीट जेसी ओवेंस, जिन्होंने 1964 में बीबीसी से बात करते हुए ये शब्द कहे थे। उनका असली नाम जेम्स क्लीवलैंड ओवेंस था। वो 1913 में अलाबामा में पैदा हुए थे।
Like the rest of the world, the US is preparing for the Olympic Games. In the 100 meters, it's Jesse Owens, the brown flash from Ohio, running away with the race. Again in the long jump, it's Jesse Owens, leaping 26 feet 3 inches.
जेसी ने पहले 100 मीटर की दौड़ 10.3 सेकंड में जीती। उसके बाद उन्होंने लंबी कूद और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले किसी अमरीकी ने एक ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक नहीं जीते थे।
जेसी ओवेंस इन द 100 मीटर, द वर्ल्ड्स मोस्ट सुपर्ब रनर मेक्स द अदर्स लुक एज़ इफ दे आर वॉकिंग एज़ ही विंस द फाइनल एंड इक्वल्स द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड टाइम। दिस एंड हिज लेटर विक्ट्री इन द लॉन्ग जंप मे वेल बी द एथलेटिक परफॉर्मेंसेस ऑफ द सेंचुरी।
He ran like water flowing.
वो इस तरह दौड़े जैसे पानी बह रहा हो।
जेसी ओवेंस की टीम के एक सदस्य थे मार्टी क्लिकमैन, जो एक अमरीकी यहूदी भी थे।
I judge athletes by their superiority over the rest of the field.
मैं किसी भी एथलीट का आकलन इस बात से करता हूँ कि वो बाकी लोगों से कितना बेहतर है। जेसी की क्लास के बारे में किसी को कोई शक नहीं था।
ग्लिकमैन बताते हैं कि ओवेंस जर्मन दर्शकों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें एक गुप्त द्वार से ओलंपिक स्टेडियम में ले जाया जाता था, ताकि प्रशंसकों की भीड़ उन्हें घेर न ले।
Many times during the course of his various competitions, you could hear the chant through the stands of thousands of people raising their voices and repeating in unison.
कई बार उनके मुकाबलों के दौरान आप लोगों को एक साथ चिल्लाते सुन सकते थे। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग एक स्वर में आवाज लगाते थे, ओवेंस ओवेंस ओवेंस। बर्लिन में सिर्फ ओवेंस को ही इस तरह की वाहवाही मिली थी।
जेसी ओवेंस की हीरो की तरह अमेरिका वापसी हुई थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने कई व्यवसायों में अपना हाथ आजमाया, लेकिन उनमें किसी में कामयाबी नहीं मिली। एक समय ऐसा भी आया जब वो पैसा कमाने के लिए घोड़े से दौड़ करने के लिए राजी हो गए। 1980 में सिर्फ 66 साल की उम्र में जेसी ओवेंस का देहांत हो गया। आज तक उन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ ओलंपियन में से एक माना जाता है।
You think in terms of the years of hard work and then you look at the crowd and you hear the cheers of the crowd and you hear your national anthem of your country and you see your flag.
आप सोचते हैं सालों की कड़ी मेहनत के बारे में, फिर आप भीड़ की तरफ देखते हैं, उसके शोर को सुनते हैं, फिर आप अपने देश के राष्ट्रगान को सुनते हैं। जब आपके देश का झंडा ऊपर जा रहा होता है, फिर जब आप स्वर्ण पदक ले रहे होते हैं, तो आप अपने आप से कहते हैं, मैं ओलंपिक चैंपियन हूं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ।
और अब रियो ओलंपिक्स में भारत की संभावनाएं। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के दो पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त पदक लाए थे। रियो ओलंपिक में अब तक 6 भारतीय पहलवानों ने क्वालिफाई किया है, योगेश्वर दत्त उनमें से एक है। मैं उनके ट्रेनिंग कैंप गया तो वो सुबह सुबह वॉलीबॉल मैच खेल रहे थे। मैच के बाद मैंने उनसे पूछा कि अस्ताना में हुआ क्वालिफाइंग मुकाबला कितना कड़ा था।
कंपटीशन काफी टफ था और मैं पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप नी की वजह से मैं नहीं खेल पाया था, क्योंकि मेरे पिछले साल नी के 3 ऑपरेशन हुए थे। यह कि अब दबाव था काफी, क्योंकि पूरे देशवासियों को मेरे पे उम्मीद थी और सबकी नजरें मुझ पे थी, ऐसे टाइम में दबाव होता है। बस यही था कि मैं यही सोच रहा था कि इस बार मेरे को क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम कम होता चला जाता है। मेरा पहला मुकाबला था जो वो डीपीआर कोरिया के साथ था, दूसरा वियतनाम के साथ था, और जो सेमीफाइनल बाउट थी वो कोरिया के साथ थी। ये कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था।
सबसे मुश्किल मुकाबला कौन सा था?
देखिए ऐसे उसमें सभी मुश्किल होते हैं। मेरा पहला मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल कड़े थे, क्योंकि डीपीआर कोरिया कोरिया दोनों अच्छे पहलवान थे। वियतनाम का था वो थोड़ा मेरा मतलब उसके साथ इतना वो टेंशन नहीं थी मेरे को, पर यही है कि किस पहलवान कोई भी उसको अड़के में लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो प्रेशर था वो सेमीफाइनल बाउट पर, क्योंकि अगर हम जीतते तो क्वालिफाई करते हैं, इसलिए सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा दबाव था। पर जब मैंने पहले सोचा था कि नहीं साथ खड़ा होगा, मतलब मैंने उनको एक तरफा मुकाबले में हराया, डीपीआर कोरिया को 7-2 से और कोरिया को 7-0 से, और जो वियतनाम का था उसको मैंने वाई फालचित किया।
और अब आजकल जब आप ट्रेन कर रहे हैं, क्या दिनचर्या होती है आपकी, किस तरह से शुरू होता है आपका दिन?
मैं बता दूं कि 2012 में जब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया ओलंपिक में, तब से मैंने सोचा था कि नहीं गोल्ड चाहिए ओलंपिक में, और तब से मेरा पूरा फोकस ये है कि देश के लिए गोल्ड जीतना है। बीच में इंजरी भी हुई, 2013 भी मैं पूरा साल नहीं, इंजरी की वजह से कहीं कॉम्पिटिशन नहीं खेल पाया, पूरा साल इंजरी नहीं रही। उसके बाद फिर अभी 2015 में 3 ऑपरेशन हुए मेरे नी के, पर मेरा अपने प्रैक्टिस में कभी हुआ नहीं कि मैं अगर मैच भी नहीं करता तो जिम वगैरह जो अभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को करता रहता था। अभी भी ये है कि हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, हमारा जो क्लास लगती है वो 8 बजे लगती है, 8 से हमें 11 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं, 3 घंटा सुबह होती है और 3 घंटे शाम को होती है, और हमारा पूरा फोकस रहता है कुश्ती पे, अपनी ट्रेनिंग पे, हमारा कहीं घूमना फिरना भी नहीं होता है। बस हमारा मेन दवाई यही है कि हम यही रेस्ट करें और सुबह शाम ट्रेनिंग करें, हमारी 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को ट्रेनिंग होती है।
रियो में आपका मुकाबला किन लोगों से होगा, टॉप पहलवान कौन कौन से हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आप उनसे भिड़ेंगे?
देखिए रियो में अभी 19 पहलवान क्वालिफाई करेंगे, और विश्व के जो पहले 19 पहलवान है तगड़े वो होंगे, सभी अच्छे हैं, ये नहीं बोल सकते कोई कमजोर है। बस ये है कि मैं हमारा जो ज्यादा अभी जो इस साल 2015 में जो वर्ल्ड चैंपियन बना, इटली का पहलवान, रशिया है, ईरान है, जापान है, उज्बेकिस्तान है, मतलब काफी पहलवान है। बस ये है कि हमें वो दिन अपना बनाना है, जिस दिन हमारी कुश्ती होगी कि उस दिन हमारा हो।
ये थे योगेश्वर दत्त। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी दिन इसी समय चलो रियो में। रेहान फदल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इस कार्यक्रम का विस्तृत संस्करण आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अभी खबर आ रही है कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों के हमले में सेना के 2 जवानों के मारे जाने की खबर है और 6 लोगों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। इस खबर पर विस्तृत चर्चा हम अगले कार्यक्रम में करेंगे। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख जावेद अहमद ने कहा है कि मथुरा के जवार बाग को उपद्रवियों से पूरी तरह खाली करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि जवार बाग में कल हुई हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 24 लोगों की मौत हो गई। ग्रीस के कीट द्वीप पर नाव पलटने के बाद बड़ा बचाव अभियान जारी है। ग्रीस के कोस्ट गार्ड के मुताबिक अब तक 340 लोगों को बचा लिया गया है, 4 लोगों के शव निकाले गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की ओर से पेरिस में बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसराइल फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया को बहाल करने पर सहमति बनी है। फ्रांस के विदेश मंत्री के मुताबिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले 20 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि अब नए सिरे से बातचीत की रूपरेखा तैयार करेंगे। फ्रांस के मध्य हिस्से में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। फीफा के अधिकारियों का कहना है कि हाल तक फीफा के शीर्ष पदों पर रहे 3 अधिकारियों ने खुद को कानून के मुताबिक वेतन नहीं दिए थे। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही दिन भर का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन दुनिया भर की हर पल बदलती खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।